अगले दिन इंस्टीट्यूट में अथॉरिटी मीटिंग थी। मीटिंग में रूल्स आदि से संबंधित चर्चा हो रही थी। रूल्स को और कड़े करने को लेकर बात की गई ताकि अगली बार कोई फेक आइडेंटिटी से एडमिशन ना ले सके। काफी देर की चर्चा के बाद मीटिंग में प्रियल की आइडेंटिटी को चेक किया गया, जो रियल निकली। निक को ये देखकर हैरानी हुई, वो सोच में पड़ गया। इसके बाद उसने सोचा मिस्टर दत्ता जैसा इंसान कुछ भी कर सकता है, और दोबारा से अपने पॉइंट पर स्ट्रांगली अड़ गया। मिस्टर दत्ता को भी मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन लेट होने के कारण वे इसे अटेंड नहीं कर पाए। मीटिंग उनके आने से पहले ही खत्म हो गई। निक मीटिंग खत्म कर कमरे से बाहर निकला, जहां उसकी टक्कर मिस्टर दत्ता से हुई। निक मिस्टर दत्ता को देखते ही बोला, मिस्टर दत्ता, आप? निक के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। यू आर लेट, मीटिंग इज ओवर, मिस्टर दत्ता नॉर्मल अंदाज में बोले। मीटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होगी कैप्टन निक, वरना मेरे बिना खत्म नहीं होती, निक ने अपने ही अंदाज में कहा। हाँ, मीटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं थी, बट मीटिंग किस वजह से रखी गई वो रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट था, और आपने वो मिस कर दिया। काफ़ी गहरे राजों से पर्दा उठने वाला था, आपने वो सब भी मिस कर दिया, मिस्टर दत्ता हैरानी से उसे देखने लगे। और वो रीज़न क्या था, उन्होंने पूछा। निक मुस्कुराया। मैं तो बताने से रहा नहीं, मीटिंग में आते तो शायद पता लग जाता, बट अब आपको कुछ नहीं पता तो वो रीज़न जो भी था वो सरप्राइज़ है आपके लिए। निक अपने अंदाज में तीखापन दिखा रहा था ताकि मिस्टर दत्ता को मजाक लगे। मिस्टर दत्ता ने भी हैरानी छोड़ी और तीखे तेवर अपनाते हुए कहा, क्या बात है कैप्टन निक, आप और मेरे लिए सरप्राइज तैयार कर रहे हैं? लगता है हमारे बीच के गिले शिकवे दूर हो रहे हैं। चलो अच्छा है, हो भी जाने चाहिए, पता नहीं क्यों बेवजह पीछे पड़े हो। मिस्टर दत्ता ने आसपास देखा और कहा, इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छी लड़कियाँ हैं, कोई एक लड़की पसंद करो और शादी कर सेटल हो जाओ। फिर उन्होंने अपने चेहरे की मुस्कान को गहरा किया और कहा, कब तक एक ही लड़की को याद करते रहोगे? एक बार के लिए निक अपनी पुरानी यादों में खो गया, उसके सारे दुख उसके सामने आ गए। वो महसूस करने लगा जैसे वो दुख के गहरे सागर में गिरता जा रहा है, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और नॉर्मल किया। खुद को नॉर्मल करने के बाद निक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी चिंता ना करें तो ही अच्छा, क्योंकि जब आप चिंता करते हैं तब कब किसकी चिंता उठ जाए कोई नहीं समझ पाता। मिस्टर दत्ता को जैसे कुछ याद आया, हालांकि उन्होंने एक तरह से कुछ याद करने का नाटक किया था। ओह, समझ गया किस बात को लेकर उखड़े हुए हो, अभी भी वो बात तुम्हारे दिमाग से निकली नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब आपको कोई सबूत नहीं मिला, वो भी पिछले 7 सालों से, तो आप सच्चाई स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं मान लेते उन सब में मेरा हाथ नहीं था? खैर, 7 सालों से मेरा कुछ नहीं उखड़ा है तो आगे क्या उखाड़ लोगे, करते रहो जो करना है। प्रभास दत्ता इतना कहकर वापस जाने के लिए निकल गए, जबकि निक उन्हें जाते ही देखता रहा। प्रभास दत्ता के जाने के बाद निक बोला, तुम पिछले 7 सालों से तो बच गए, मगर अब आगे और नहीं बच पाओगे। तुम्हारे दिन नज़दीक आ रहे हैं, तुम्हारी बर्बादी के दिन, और तुम्हारी बर्बादी कोई और नहीं बनेगा, बिल्कुल मैं ही बनूंगा। इतना कहने के बाद निक इस बारे में सोचने लगा कि आखिर प्रियल की आइडेंटिटी रियल कैसे है। वो इस बारे में सोचता हुआ बोला, समझ में नहीं आता, जब प्रियल प्रभास दत्ता की बेटी है तो ये बात उसके डॉक्यूमेंट्स में क्यों निकल कर नहीं आ रही है? शायद इसके पीछे का जो भी सच है इसका पता मिस दत्ता से ही चलेगा, वो ही बताएगी इसके पीछे की कहानी क्या है। इतना कहकर वो भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग सेंटर की ओर निकल गया। प्रियल, सुधा और आरोही बास्केटबॉल खेल रही थीं और आपस में बात भी कर रही थीं। प्रियल का इंटरेस्ट बास्केटबॉल खेलने में नहीं था, मगर सुधा और आरोही उसे ज़बरदस्ती ले आए थे। इसके पीछे उनका ये मोटिव था कि प्रियल का ध्यान भटके और वो चीज़ों को लेकर परेशान ना हो। वो अपनी परेशानी की वजह से रात भर सो भी नहीं पाई थी, रोना तो उसका अलग से जारी था। रात की ऐसी हालत के बाद दिन में सब सही रहे, इसलिए वो लोग उठते ही उसे थोड़ा घुमाने फिराने के बाद बास्केटबॉल खेलने के लिए दे आए। सुधा ने खेलते हुए थोड़ा मजाकी अंदाज में कहा, प्रियल, आज तो तुम्हें खुद को दुल्हन तैयार करना होगा। दुल्हन? वो क्यों? प्रियल ने पूछा। इसलिए क्योंकि कैप्टन निक तुम्हारे जानी दुश्मन बन चुके हैं, और जानी दुश्मन को जलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि खुद खुश रहो और अच्छे बनकर रहो। क्या कुछ भी, प्रियल बोली, वो उल्टा मेरी बड़ी बजाने पर तुले हैं, और तुम चाहती हो मैं सच थच कर बैठूं? हाँ, तो फिर तुम्हें रोना ही रोना है, सुधा ने बास्केटबॉल उछाली और उसकी तरफ फेंकी। नहीं, रोना भी नहीं रोना, मगर मुझे अब कैप्टन निक से डर लगने लगा है। मैं बस खुद को सही प्रूफ करूंगी और फिर कुछ दिनों के लिए अपने ही काम पर ध्यान दूंगी। जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक मैं कैप्टन निक पर ध्यान नहीं दूंगी। इसके शब्दों के पीछे का सच ये है कि ये अपना सच साबित करने के बाद उस पर और भी ज्यादा ध्यान देगी, आरोही बीच में कूदती ही बोली, जिसके बाद सुधा हंसने लगी। आरोही भी हंस पड़ी। दोनों हंस रहे थे तो प्रियल के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी निक की एंट्री ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हुई। उसने तीनों को कुछ देखा और फिर प्रियल की तरफ नजर गड़ाई। प्रियल को मुस्कुराते देख निक बोला, बिल्कुल अपने बाप की तरह है ये भी, इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद मुस्कुरा रही है, किसी चीज का अफसोस ही नहीं है इसे। निक ने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर उतरकर उन सभी की ओर चला। उनके पास पहुंचते ही उसने सुधा और आरोही को कहा, सुधा एंड आरोही, आई वॉन्ट टू टॉक टू मिस दत्ता, सो प्लीज लीव। उसने जिस अंदाज में कहा था, सुधा और आरोही के चेहरों पर बिल्कुल चुप्पी छा गई। निक का चेहरा ऐसा हो रखा था कि उसे देखते ही डर लग रहा था। सुधा ने थोड़ी हिम्मत की और उसकी बात के बीच में आते हुए कहा, हूँ मिस दत्ता, यहाँ मिस दत्ता कौन है? हम में से कोई भी मिस दत्ता नहीं है। निक ने अपने चेहरे को और साइलेंट किया और जोर से लगभग ऑर्डर वाले अंदाज में बोला, जस्ट डू वॉट आई सेड। क्या तुम सब यहाँ रहकर ये सब सीख रहे हो? ये है कि अपने सीनियर से सवाल जवाब करो। आरोही और सुधा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आंखें नीची कर वहां से चले गए। प्रियल वैसे ही घबरा गई थी। उन दोनों के जाने के बाद उसने अपना चेहरा नीचे किया और चुपचाप खड़ी हो गई। निक प्रियल के पास आया और उसके सामने अपने हाथ पीछे कर खड़ा हो गया। वो प्रियल का चेहरा ऊपर उठाने का इंतजार कर रहा था, मगर प्रियल ने घबराहट के मारे काफी देर तक अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। उसने चेहरा ऊपर नहीं किया तो निक बोला, ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझसे नजरें ना मिलाकर मेरी इंसल्ट कर रही हो। प्रियल धीमी सी आवाज में बोली, बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं आपकी इंसल्ट करना चाहती हूँ। ओ शट अप, अपना ये भोलेपन वाला अंदाज छोड़ो, तुम्हारे ये शब्द अब तीर की तरह चुभते हैं। इसके बाद वो अपनी बात पर आया और उससे पूछा वो जो उसे पूछना था, तुम्हारी आइडेंटिटी रियल कैसे हो सकती है, तुम आखिर क्या छिपा रही हो? प्रियल को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। उसके हिसाब से उस पर बेवजह का इल्जाम लग रहा था, जिसके पीछे की बात भी उसे नहीं पता थी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और निक की आंखों में आंख मिलाते हुए बोली, रियल है तो रियल ही निकलेगी ना, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर मैंने किसी तरह का धोखा नहीं किया। इतना कहकर वो वहां से चली गई। निक ने उसे जाते हुए देखा तो वो पीछे से बोला, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मगर इससे पहले प्रियल उसकी बात सुनती वो उससे काफी दूर चली गई। निक ने अपने चेहरे पर और भी ज्यादा गुस्सा दिखाया और हाथों की मुठ्ठियां कसकर मुड़कर अपने कमरे की ओर चला गया। प्रियल काफी दूर जाकर बोली,
इस पागल को ये बात समझानी पड़ेगी, वो मिस्टर दत्ता मेरे डैड नहीं है, मेरी बहन के हस्बैंड है। उसे तो मैं सपने में भी अपने डैड के रूप में ना देखूं। अगर दुनिया में मुझे किसी से सबसे ज्यादा नफरत है तो वो इस प्रभास दत्ता से ही है। सुधा पीछे से आई और उसके कंधे पर हाथ ठोकते हुए बोली, क्या हवाओं से बात कर रही है? जो कहना था उसे कहना था और उसके सामने कहना था। एटीट्यूड तो देखो उसका, खुद को सीनियर कह रहा है और एक भोली भाली लड़की का कल रात हाथ मरोड़ दिया। प्रियल चलते चलते बोली, उसको तब बोलूँ ना जब वो बात सुने, पता नहीं कब बैठकर मेरी पूरी बात सुनेगा। 24 घंटे में से 20 घंटे तो उसका चेहरा सड़ा सा रहता है। इस सड़े से चेहरे के साथ कुछ कहने का मन हो तो वैसे ही दिमाग को बदल जाता है, शक्ल देखकर बात कहने का मन ही नहीं करता। प्रियल ने अपने दोनों हाथ जेब में डाल लिए। निक को लेकर उसका उबलता हुआ गुस्सा भर भर कर निकल रहा था। सुधा मुस्कुराई और बोली, गोद में बैठकर टाइम पास करना, क्या पता सुन ले। प्रियल ये देखते ही उसकी तरफ हुई और थप्पड़ दिखाते हुए बोली, मारूंगी मैं तुझे, तू कुछ ज्यादा ही मजाक मस्ती सुझाती है। सुधा ने ये देखा तो वो दौड़ने लगी, वहीं प्रियल भी उसके पीछे दौड़ने लगी। उसने जो हाथ बाहर निकाला था वो उससे थप्पड़ उसे मारने वाली थी, जिसके लिए वो उसके पीछे दौड़ रही थी। सुधा ने दौड़ते दौड़ते सॉरी बोला, मगर प्रियल फिर भी नहीं मानी। वो उसके पास पहुंची और थप्पड़ उसे मार दिया। इन मोमेंट्स ने माहौल थोड़ा खुशमिजाज कर दिया था, खासकर प्रियल के लिए।